नारायण नारायण नारायण। हरि कथा अमृतम श्रवण करने का हम लोगों को लाभ मिल रहा है। राजा निमि विदेहराज के प्रश्न के उत्तर में अंतरिक्ष महाराज माया का स्वरूप का वर्णन भगवान की अभिन्न शक्ति अभिन्न लीला के रूप में कर रहे हैं। माया का वर्णन होते हुए भी ये हरि का ही कीर्तन है। आज हरि मास लौकिक दृष्टि से पूर्ण हो रहा है, पुरुषोत्तम मास है। इसका वैसे नाम था मल मास। मल मास इसको इसलिए कहते हैं कि इस पूरे महीने में संक्रांति एक भी नहीं आती है, अन्यथा हर महीने में एक संक्रांति आती है और इस महीने में एक भी संक्रांति नहीं आती, इसलिए मल मास कहते हैं। तो दुखी व्यक्ति भगवान के पास जाता ही है मल मास, ऐसा कहते भगवान के पास गया कि महाराज और सब पवित्र मास से पुण्य पवित्र अमुक मास से कहते हैं और हमको मल मास से कहते हैं, तो हमको थोड़ी कॉम्प्लेक्स तो होती है। आखिर हम आपके क्रिएशन हैं और हमको मल मास कहा जाए, तो पुण्य पवित्र वैशाख मास से पुण्य पवित्र कार्तिक मास से, तो वो पुण्य पवित्र आपके क्रिएशन, हमने कौन सा अपराध किया? तो भगवान ने कहा अच्छा तुम चिंता मत करो, तुमको मल मास कहा गया तुम रहोगे तो मल मास, लेकिन तुम्हारे साथ मैं अपने आप को जोड़ देता हूं, तुम मेरे महीने कहलाओगे और सब कोई कार्तिक है कोई है तो मेरा महीना। इसीलिए उसको भगवान पुरुषोत्तम का महीना कहा जाता है, क्योंकि श्रीहरि भगवान पुरुषोत्तम और सब पुरुष हैं, ये पुरुषोत्तम है, तो ये पुरुषोत्तम मास है। और बड़ी सफलतापूर्वक आप लोगों ने जिसके जिसके मन में भगवान ने जिस तरह की प्रेरणाएं दी उनके अनुसार आप लोगों ने सत्कर्म किया और भजन किया। सबसे बड़ा सत्कर्म तो भजन है, भजन से बढ़कर के और कोई सत्कर्म है नहीं। कम से कम कलयुग के लिए तो सबसे बड़ा सत्कर्म भजन ही है। नामी यावती शक्ति पाप निर्बरहणे हरे तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी न रहा। भगवान के एक नाम हरि में पापों को नाश करने की जितनी सामर्थ्य उतने पाप तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो ऐसे पवित्र मास का आज चरम दिवस है। आप लोगों का प्रतिनिधि बन के मैं समुद्र स्नान कर आया, सब आप लोगों के लिए, हमारे लिए क्या करना, हमारा हो गया। तो आप लोगों के लिए स्नान करके आया और फिर आकर के जरा आपके सामने आने लायक बन रहा था, उसी के कारण 11 मिनट देर हो गई। तो उसकी आप क्षमा करेंगे हमको कि महाराज 11 मिनट लेट कैसे आए, तो मैंने हेतु बता दिया। आप लोगों के लिए गया था, वहां भी आप सबका ही कल्याण चिंतन कर रहा था। एक बार एक वकील साहब, सच्ची घटना है, हमारे एक परिचित थे, तो उनसे वो वृंदावन की यात्रा करने गए, तो वृंदावन की यात्रा के समय की भी फीस उन्होंने उससे मांगी। तो कहता आप तो वृंदावन जा रहे थे तीर्थ यात्रा करने के लिए, उसकी फीस हमसे मांग रहे हैं। तो कहा आप दिल्ली से वृंदावन के रास्ते में हम केवल तुम्हारे केस का ही चिंतन कर रहे थे, इसलिए तुमको उसकी फीस देनी पड़ेगी। अब बेचारे गरीब को देना पड़ा, सच्ची बता, मरे हमको एक गप नहीं सुना रहे, उसको दिल्ली से वृंदावन तक की फीस देनी पड़ी कि हमारा चिंतन। तो उसी तरह हम भी आपका चिंतन करते हुए कहते हो चिंतन करते आए, इसलिए हमारी फीस तो यही है, तुम जितना हो सके और अधिक भजन करो, और उससे अधिक हमको क्या फीस दोगे। तो अच्छा है आज अधिक मास है, कोई न कोई मन के माने चरम पुरुषोत्तम मास का चरम दिवस है, मंगलमयी अमावस्या है। मन के अंदर कोई संकल्प एक अच्छा कर लो, और कोई एक संकल्प जो मन में लगता हो कि हमारे में गलती है उसको दूर कर सकें, ऐसी चेष्टा करना चाहिए। हम ये नहीं कहते दूर कर दो, ना हो पाए तो फिर तुम वाणी दे करके वचन देकर के पाप के भागी न हो, इसलिए हम ये कहते कोशिश करो हम ईमानदारी का, उसमें बेईमानी नहीं करना, कि हम ईमानदारी पूर्वक आज से ये काम खत्म करने की, बंद करने की या कम करने की चेष्टा करेंगे। और कुछ नहीं तो दो मिनट रोज एक्स्ट्रा जितना कर रहे हो, दो मिनट से कम कर दो हमारा, हम पांच मिनट वैसे रखते हैं 7.5 लेकिन दो मिनट कर दिए यहां के लिए, मुंबई वालों के पास कम वक्त है, माने टाइम कम है, तो दो मिनट के टाइम एक्स्ट्रा रखोगे विलिंगली अनविलिंगली, आज से दो मिनट ज्यादा भजन करेंगे। तो ये पुरुषोत्तम मास का और अमावस्या का पूरे महीना का सत्फल हो जाएगा। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, हमारे मन में सदैव शिव संकल्प ही, अच्छे अच्छे ही संकल्प आए। अच्छे संकल्प करोगे तो बुरे संकल्प अपने आप छूट जाएंगे। ये मत सोचना कि ये कहा जा रहा है तो जैसे इस मशीन को कोई लेना देना, सुन रही है और उसमें कोई लेना, तो चाहे जो कह दो, जो हमारे शब्द सुना ऐसे, हाँ जो इस स्थिति तक पहुंच गए हों कि इंद्रियाणी इंद्रिया से सुवर्तनता इतिहास, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है, वो तो नियम कानून से ऊपर हो गए। लेकिन जिनको अपने शरीर से अभिमान हो, जिनको लगता है हम करते हैं खाते हैं पीते हैं, इसके पुण्य पाप हमको होंगे, उनको चाहिए कि कम से कम एक दो मिनट एक्स्ट्रा भजन आज से करेंगे, ऐसा कर ले तो अच्छा है, न कर पाए तो कोई जबरदस्ती नहीं, अगर क्या कोई जोर जबरदस्ती है क्या, तो लेकिन अच्छा रहता है कि इसी ब्याज से थोड़ा भजन और बढ़ जाएगा। तो आज पुरुषोत्तम की ही ये चर्चा हो रही है, इसीलिए राजा ने कहा है कि आपके मुंह से हरिकथा मृतम श्रवण करते समय हमको तृप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि इसके माध्यम से संसार के ताप का नाश हो रहा है। तो अंतरिक्ष भगवान ने कल आप लोगों ने सुना था, बताया था कि ए भी रिमाने ये सामने जो दृश्य हैं पंचभूत माया का स्वरूप सीधे वर्णन नहीं हो सकता, हम लोगों ने कई बार सुना है, इसलिए किसी ब्याज से उसका वर्णन कर रहे हैं कि ए भी भूतान माने ये पंचभूतों के द्वारा भूतात्मा परमात्मा भगवान ने ससर्ज ये सृष्टि की है ऊंची और नीची, काहे के लिए स्वमात्रात्मा प्रसिद्ध है, अपने जनों के कल्याण के लिए। मात्रा माने भोग, मात्रा माने कल्याण, मात्रा माने भक्ति, मात्रा माने ज्ञान। आप लोग आश्चर्य नहीं करना, ये सृष्टि भगवान ने इसलिए रची है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ज्ञान की प्राप्ति माने श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथकोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा, मैं उस परमात्मा से अभिन्न हूं, मैं रमण बिहारी का हूं, रमण बिहारी हमारे हैं, इस तरह से परमात्मा के साथ अभेद की अनुभूति ही वस्तुतः ज्ञान है। तो वो ज्ञान हमको प्राप्त हो जाए, तो वो ज्ञान हमको प्राप्त हो जाए इसके लिए सृष्टि क्यों रची, तो इसलिए सृष्टि रची है कि अगर ये सृष्टि नहीं होगी तो तुम्हारा शरीर नहीं होगा, शरीर नहीं होगा तो तुम्हारी इंद्रियां भी नहीं होंगी, इंद्रियां नहीं होंगी मन भी नहीं होगा, मन भी नहीं होगा तो बुद्धि भी नहीं होगी। तो जो पहले के हमारे कर्म हैं उनके नाश पूर्वक श्रवण और मनन कैसे होगा, जब तक शरीर नहीं है, जब तक इंद्रिय नहीं है, जब तक मन नहीं है, तब तक श्रवण भी नहीं हो सकता है। तो ज्ञान के लिए श्रवण आवश्यक है, और वो श्रवण सृष्टि के अनंतर ही हो सकता है। तो श्रवण के लिए भगवान ने मौका दिया है आपको, ये इंस्ट्रूमेंट प्रदान करके कि लो भाई इससे तुम श्रवण करो। फिर इसके बाद मन और बुद्धि दी है कि इसके बाद श्रवण के बाद मनन करो, मनन करने के बाद फिर जब लग जाए कि हाँ ये बात सही है और ये बात गलत है, तो जो बात सही है उसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करो, निधिध्यासन करने की कोशिश करो। तो श्रवण मनन और निधिध्यासन, तदनंतर मल विक्षेप, इनकी निवृत्ति पूर्वक मल कर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा विक्षेप, और श्रवण मनन के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा आवरण का निषेध करके आत्म प्रसिद्ध है, अपने आत्मस्वरूप को जान सको, इसके लिए भगवान ने सृष्टि की है। तो ये सृष्टि हमको ध्यान रखना है, हमारे कल्याण के लिए है, मेरे कल्याण, हमारे क्या, मेरे कल्याण के लिए, मेरा कल्याण कैसे हो, इसके लिए भगवान ने यह सृष्टि बनाई है। तो स्वमात्रात्मा प्रसिद्ध मां ज्ञाने, प्रमा ज्ञान, तो मां की सिद्धि के लिए, ज्ञान की सिद्धि के लिए भगवान ने यह सृष्टि बनाई। तो आप देखें, हमारे भोग के निमित्त, हमारी भक्ति के निमित्त, अगर हाथ पैर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो ठाकुर जी की माला कैसे गूंधेंगे? ठाकुर जी की माला गूंधने के लिए हाथ चाहिए, भगवान की परिक्रमा करने के लिए पैर चाहिए, भगवान की छवि अवलोकन के निमित्त नेत्र चाहिए, भगवान के निमित्त अमनिया बनाने के लिए सब अंग चाहिए, भगवान के दिए हुए प्रसाद को ग्रहण करने के लिए, आस्वाद लेने के लिए रसना चाहिए। ये सबकी सब इंद्रियां, भगवान का कीर्तन सुनने के लिए कान चाहिए, भगवान का कीर्तन बोलने के लिए वाणी चाहिए। तो ये सब भक्ति के उपकरण हैं। ये भक्ति के उपकरण हमको कैसे प्राप्त होंगे? तो ससर्ज भगवान ने सृष्टि की, स्वमात्रात्मा प्रसिद्ध है। हमारी भक्ति सफल हो सके इसलिए, हमारे भोग सफल हो सके इसके लिए, हमारा ज्ञान उपलब्ध हो सके इसके लिए स्वमात्मात्मा प्रसिद्ध है। इस सृष्टि की रचना भगवान ने हमारे कल्याण के लिए की है। तो सबसे बड़ी चीज है, हम संसार को दुख रूप जो मानते हैं, इसको मानना बंद कर दें। दुख रूप तो नहीं है, कष्टकर है वो एक अलग बात है, लेकिन दुख रूप है। दुख रूप अगर है तो हमारे अज्ञान के कारण है, हम उसके पीछे, उस सृष्टि के पीछे हमारे कल्याण की क्या व्यवस्था है ये नहीं देख रहे हैं। ऑपरेशन के पीछे, सुई लगाने के पीछे, कड़वी दवाई देने के पीछे, बादाम का हलवा खिलाने के पीछे, शहद और घृत मिला करके औषधि देने के पीछे क्या हेतु है ये हम नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हम इसको सुख दुख रूप संसार मानते हैं। वस्तुतः ये संसार तो केवल और केवल हमारे कल्याण के लिए। आप कहोगे भी भगवान शंकराचार्य जी इसको मिथ्या क्यों कहते हैं? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो संसार को मिथ्या क्यों कह रहे हैं? और एक और झगड़ा, भगवान वल्लभाचार्य इस संसार को सत्य कह रहे हैं। अब दो आचार्य, दो विद्वान, आत्म साक्षात्कार किए हुए महापुरुष अब दो बातें कह रहे हैं, तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। या तो शंकराचार्य जी गलत कह रहे हैं, या फिर वल्लभाचार्य जी गलत कह रहे हैं। कौन गलत कह रहे हैं? तो इसमें से गलत कोई नहीं कह रहा है, दोनों ही 100% सही कह रहे थे। आप कहोगे कि महाराज आपके दिमाग के ऊपर भी हमको थोड़ा डाउट होने लग गया। एक कह रहे संसार नहीं है, मिथ्या है, और एक कह रहे हैं कि संसार है, सत्य है, और उसको आप कह रहे हो यस ऐसा ही है, तो वो तो जैसे हैं ठीक है, आपकी बुद्धि ठीक है, आप कह रहे है भी और नहीं भी, तो इसको इस तरह से समझो माय डियर, संसार ब्रह्म की तरह सत्य नहीं है, लेकिन गधे की सींग की तरह अलीक भी नहीं है। जैसे गधे के सींग होते ही नहीं, अब वो नीले होते हैं कि लाल होते हैं कि हरे होते हैं कि लंबे होते हैं कि छोटे होते हैं कि नुकीले होते हैं कि भोथरे होते हैं, किस तरह के सींग गधे के होते हैं बताओ? गधे के सींग है ही नहीं, तो ना वो मोटे ना पतले ना लंबे ना नीले, उसी तरह के नहीं है। तो संसार ऐसा नहीं है, भगवान शंकराचार्य जी ये नहीं कहते हैं कि संसार जो है शून्य एकदम अलीक, ऐसा नहीं कहते हैं। संसार है, लेकिन हम सत्य केवल उसको मानते हैं, उनकी परिभाषा है साफ साफ कि जो त्रिकाला बाधित हो वो सत्य है, जो हमसे पहले भी था, हम जब तक हैं तब भी है, और हम जब नहीं भी रहेंगे तब भी रहेगा। ऐसे भूत भविष्य और वर्तमान में जो तीनों में रहे उसको हम सत्य मानते हैं। त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम, जो तीनों काल में रहे वो सत्य है, जो तीनों कालों में न रहे वो हमारे यहां सत्य नहीं, ये हमारी परिभाषा है। अब इस परिभाषा के अनुसार संसार हमसे पहले से तो है, भूत में तो था, वर्तमान में भी है, लेकिन ज्ञान के अनंतर नहीं रहता है, इसलिए हम इसको सत्य नहीं कहते हैं। अलीक भी नहीं है गधे की सींग की तरह। तो व्यवहार काल में जब तक संसार है तब तक बिल्कुल सत्य है। हमारे ब्रज में आज मालपुआ खिलाते हैं, बोलो, और अगर खीर उसके साथ हो तो फिर तो क्या पूछना है। तो हमारे यहां खीर मालपुआ को काली रोटी और धवली दाल कहते हैं। धवली दाल माने सफेद दाल और काली रोटी। जब पहली बार हमने सुना घी कौन सी, मतलब कोई फूहड़ ग्रस्त होगी जो हो नमक उसमें हल्दी डालना भूल गई, तो सफेद दाल। और मुसलमानों के यहां एक उड़द की दाल बनाते हैं, सफेद ही होती है, हल्दी नहीं डालते हैं। उसका कभी जाना वहां तो पूछना, तो वो दाल उसमें वो एकदम सफेद एकदम प्लेट में पड़ी तो दिखाई न पड़े खीर की तरह, अड़द की दाल बिना छलकर उसका। तो हम सोचे उसी तरह की कोई होगी काली रोटी और जली जली रोटी। तो हमको बताया कि नहीं, काली रोटी माने मालपुआ, और मालपुआ माने सहस्र छिद्री मालपुआ, ऐसे मालपुआ जिसमें 100 छेद हो। माने खूब बढ़िया सिका हुआ, जितने छेद होते उतना बढ़िया मालपुआ माना जाता, सिका हुआ माने। तो सहस्र छिद्री मालपुआ और काली रोटी हो गए, धौली दाल माने खीर, खीर के साथ मालपुआ। और खीर माने पहले दूध को आधा जला दिया, अधौटा दूध, और फिर उसमें खीर बनाई तो उसको खीर कहते हैं, उबाल के धर दिया काहे को। तो पुरुषोत्तम मास है आज, उसमें रोज ही का निमित्त है, लेकिन आज के दिन तो अमावस्या, खास तौर से काली रोटी धौली दाल का दिन है। तो अगर ज्ञानी खीर और मालपुआ खाएगा तो उसको कड़वा दिखाई पड़ेगा क्या? खूब आनंद लेगा, वाह। लेकिन हाँ, ये उसको मालूम है ये इंद्रियों का भोग है, मेरे स्वरूप में उसका कोई अंतर आने वाला नहीं है, ये बस इतना ही ज्ञान है। हाँ, छोटा बच्चा खिलौना टूटने पर रो जाता है, हम लोग नहीं रोते हैं। सुनार जब अंगूठी लेके आता है, हमको बड़े संभाल रहते हैं, कहीं टेढ़ी मेढ़ी ना हो, सुनार इतने थे जो उठाता है, अरे हो गई तो मैं फिटिंग, उसमें सोना थोड़ा कुछ बिगड़ेगा, अंगूठी का जो बिगड़ना है सब बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से समझो कि ज्ञानी को भी रसगुल्ला मीठा लगता है, मिर्च उसको भी कड़वी लगे। जब तक शरीर है तब तक शरीर के सारे धर्म ज्ञानी के भी होते। अब विवेक, अरे जिसको डायबिटीज है, हमारी मनु बहन को रसगुल्ला कोई कड़वा लगेगा क्या? पूछो, बैठिए। अब बहुत मीठा लगता है, बड़ा मन करता है, लेकिन शुगर बढ़ जाएगी इस डर के बारे खाती नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन इसका माने थोड़ा कड़वी लग रही है, रसगुल्ला बहुत मीठा लगता है, तो उसमें फर्क नहीं है। लेकिन ज्ञानी इसी तरह से अगर कोई चीज हानिकारक है तो विवेक से उसको छोड़ता है, एक को जबरदस्ती छुड़ाना पड़ता है और एक अपनी अकल से, नहीं भाई अब शुगर बहुत खा ली, अब तो किसी शरीर के साधन मात्र के लिए और कुछ आहार ले लेना है। ये तो हमारा कहना ये है कि भगवान शंकराचार्य जी अगर संसार को मिथ्या कह रहे हैं तो उनका तात्पर्य ये नहीं कि अलीक है, मिथ्या माने इसके बाद नहीं रहेगा, तो उनका हेतु क्या है कि किसी तरह तुम्हारी इस संसार से आसक्ति कम हो जाए। केवल उनका निमित्त एक है, संसार में तुम आसक्ति मत करो, खाओ पियो, छको मत, बोलो चालो, बको मत, चलो फिरो, थको मत, इस तरह से तो ये सब नाटक करो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन अपने आप को समझ लो कि मैं इससे अलग हूं। भगवान शंकराचार्य हो गए। तो केवल हमारी आसक्ति निवृत्त हो जाए इसके निमित्त भगवान श्री आद्य शंकराचार्य जी इस संसार को मिथ्या कहते हैं। और दूसरा, उस समय ऐतिहासिक आवश्यकता भी थी, बौद्ध लोग संसार को शून्य कहते थे, लेकिन यहां भी हम आप लोगों को बता दें, बौद्ध लोग अगर संसार को शून्य कहते हैं तो उनका मतलब जीरो नहीं है, शून्य इसलिए कहते हैं, बौद्ध दर्शन का भी हमने, और इसलिए लोग उनको बिना उनकी बात को समझे हुए गाली देते हैं, ऐसे उल्लू है, बड़े भारी भारी नागार्जुन वगैरह और इतने बड़े 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 धर्म कीर्ति वगैरह, बड़े बड़े पंडित हुए, तो उनका आशय यह है कि इसमें किसी तरह के गुण परमानेंट नहीं है, इसलिए शून्य। तो उनका शून्य का तात्पर्य निहिलिज्म नहीं, इट्स नॉट नथिंग, नो, ऐसा नहीं है। उसका अगर पकड़ने जाओ, प्याज के छिलके को खोलते जाओ, खोलते जाओ, खोलते जाओ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद खोलो, तो अंत में कुछ मिलता नहीं है, इसलिए। बाकी प्याज नहीं है जी, क्या बात है, भेलपुरी में डाल के देखो, पता चल जाए प्याज का क्या गुण होता है। तो माय डियर, भगवान श्री शंकराचार्य जी अगर संसार को मिथ्या कह रहे तो आसक्ति न रहे इसलिए कह रहे। उसी प्रकार भगवान श्री वल्लभाचार्य जी अगर कह रहे कि संसार सत्य है तो उनका मतलब है ये सृष्टि भगवान बने। भगवान शंकराचार्य जी कहेंगे ये ब्रह्म बना है सृष्टि, एभिर भूम ससर्ज, किसने? भूतात्मा, परमात्मा ने सृष्टि की है। तो परमात्मा की सृष्टि है लेकिन परमात्मा सृष्टि नहीं है, ये भगवान शंकराचार्य का मत है, और उसमें कोई भेद नहीं, एकदम सत्य। मिट्टी से घड़ा बना है तो घड़ा मिट्टी नहीं, घड़ा से, घड़ा मिट्टी से है, लेकिन मिट्टी बिना घड़े की भी रह सकती है, यह आशय भगवान श्री वल्लभाचार्य जी अगर कह रहे हैं तो वो भी यही वेद की ही बात कह रहे हैं। ये संसार आखिर जैसे ब्रह्म बना है, सत्ता तो तुम्हारे गधे की सींग में भी सत्ता है, वो भी हमारे ब्रह्म की ही सत्ता है, और कहीं सत्ता आती ही नहीं। उसी तरह से ये सृष्टि भगवान की बनाई हुई है, चूंकि भगवान की बनाई हुई है, सच्चित आनंद है, इसलिए सृष्टि भी सच्चिदानंदात्मक ही है, तो भगवान बनाए। अब भगवान श्री वल्लभाचार्य जी की दृष्टि भगवान में है, वो सृष्टि को सृष्टि न समझ करके और भगवान का नाटक मान रहे हैं। आखिर कोई कहे कि अंगूठी सोना है तो क्या गलत कह रहा है? सोना तो है, उसमें क्या भेद है? तो भगवान श्री वल्लभाचार्य अगर सृष्टि को सत्य कह रहे हैं, भगवान मैं कह रहे हैं, तो उनकी दृष्टि यह है कि तुम्हारी जहां भी दृष्टि जाए वहां तुम श्री कृष्ण को देखने की कोशिश करो। श्री यशोदोत्संग लालित श्री कृष्ण तुमको दिखाई पड़े। तो उनका तात्पर्य संसार की आसक्ति छोड़ने का है, तुम संसार मत देखो, कृष्ण को देखो। तुम सोना देखो, अंगूठी मत देखो, बाजू बंद मत देखो, हार मत देखो। है ठीक है, दिखाई पड़ रहा है। मैंने भाई खीर मालपुआ कोई बल्भाचार्य जी को नहीं मीठी लगे ऐसी बात थोड़ा है, लेकिन उनको ये लगता है ये श्री कृष्ण ही खीर मालपुआ बन गए। और ये जो गिरिराज पूजन या श्रीनाथ जी की उपासना है इसकी बड़ी महिमा है अपने आप। इसीलिए श्रीनाथ जी कृष्ण है। श्रीनाथ माने पूरा नाम है श्री गोवर्धन नाथ। हम लोग गोवर्धन बीच में हटाते हैं, श्रीनाथ जी कह देते हैं, वस्तुतः पूरा नाम श्री गोवर्धन नाथ है। तो श्री गोवर्धन नाथ की पूजा का तात्पर्य क्या है? पूजा की सामग्री कहां से आई? श्री कृष्ण बने। पूजा की सामग्री बनाने वाले कौन है? श्री कृष्ण बने। भोग कौन लगा रहा है? श्री कृष्ण लगा रहे हैं। और भोग कौन रहा है? खुद ही पुजारी और खुद ही पूजक बने हैं, उसका मतलब क्या है? तो ये श्रीनाथ जी की पूजा का मतलब ये है, वही श्री कृष्ण ही पूजा कर रहा है, श्री कृष्ण ही पूजा की सामग्री भी है, श्री कृष्ण ही भगवान के रूप में उसको स्वीकार कर रहा है। और देखो यही ज्ञान है, भगवान की पूजा। वो वेद में भी लिखा है देवो भूत्वा देवम यजेत। जब यजन किया जाए तो आप शरीर बन के यजन मत करो, आप देवता बन के देवताओं की पूजा करो, अपने में देवत्व का आधान करो, अपने को देव समझो, दिव्य बन जाओ, माने संसारी नहीं रहो, संसार से हट करके उपासना करो। इसीलिए यज्ञ इत्यादि के समय बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहने जाते हैं। उसमें भगवान के यहां जब भगवान के ग्वाल बाल लोग भतरौर में विराज रहे थे, वो मांगने के लिए आए हैं, खाना पीना मांगने के लिए आए थे ब्राह्मणियों के यहां। तो यज्ञ में जहां एक यजनशाला होती है एक समझ, और एक जगह होता है जहां यज्ञ पत्नियां बैठती हैं, माने जो अर्चक लोग हैं जो हवन कर रहे हैं उनकी पत्नियां बैठती हैं। तो वहां लिखा हुआ है कि वो सोने से जड़ी हुई बैठी हुई थी। हमारी बात तुम लोगों को तब समझ में आएगी अगर इन चौबे लोगों के घूरे ढेल में पहुंच जाओ। एक घूरा ढेर इनके यहां होता है, यहां से लेके यहां तक वो चतुर्वेदी पत्नियां सोने से लदी हुई होती हैं। उन्हीं का देह में दम है जो पहले कमजोर तो पूरा, या जब यज्ञ उपवीत वगैरह कोई होता है तो पूरा शरीर उसी तरह से सोने से लदा हुआ। हमने अपनी आंखों से देखा, पहली बार तो आपको विश्वास हुआ कि श्री सुखदेव जी ने एकदम ठीक लिखा है, यज्ञ पत्नियों का डिजाइन यह था। तो इतना डिजाइन बन करके क्यों आई है वहां? क्योंकि देवो भूत्वा रेशमी वस्त्र पहने जाते हैं। क्यों? स्नान किया जाता है। क्यों? छौर इत्यादि सब करवा करके स्वयं अलंकृत्य च, लिखा हुआ वेद में साफ साफ, अपना पहले श्रृंगार करो और तब देवता की पूजा करो। कई लोगों को हमने देखा है कि भगवान की पूजा कर रहे हैं, कोई अंगोछा अंगोछा लपेट करके बैठ गए, सेवा करे, ठाकुर जी सेवा कर भेजा रहे, एक अंगोछा ही लपेट लिया। इसका मतलब ये है ईमानदारी पूर्वक, तुम ड्यूटी कर रहे हो, सेवा नहीं कर रहे हो। सब लोग ध्यान से सुने, भगवान की पूजा समय अपने को उस तरह तैयार करो जैसे किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलते समय तुम अपनी तैयारी करते हो। दो कौड़ी का अवसर आता है उसके लिए तो तुम डिजाइन बनाते हो दुनिया भर का, 11 बार नेकटाई ठीक करते हो अवसर से मिलने जाना है, और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक से मिलने जा रहे हो, उसके साथ गंदा संग उछाल लपेट करके चले जा रहे हो, काहे की तुम्हारी भक्ति हुई? इसलिए आत्मानम अलंकृत्य, अपना अलंकार करो। अलंकार केवल बाह्य नहीं करो, बाहर से सुंदर चले आए साबुन लगा करके और तमाशा सब लगा करके, वो उसी का नहीं, अपने को माने अपने अंतःकरण को भी अलंकृत करो, माने उसकी जो गंदगियां हैं उनको दूर करो और उनको अच्छी अच्छी आदतों से श्रृंगार करके तब भगवान के सामने खड़े हो। अब बीवी के ऊपर नाराज होके और वहां चली जाती है, भला बताओ हमने कहा था तो चाय बनाते ना, अब वो चंदन घिस रहे और बीवी को गाली देते जा रहे, माई डियर वो सेवा तो नहीं हुई और जो कुछ हुआ वो ठीक है, बीवी कह अरे ठाकुर जी के लिए चंदन घिस रहे हैं तो चंदन घिसते समय अपने को धन्य मानो, ओहो आज प्रभु ने कृपा की है हमारे ऊपर जो हमको चंदन घिसने की सेवा दी है। चंदन को कभी जबरदस्ती नहीं घिसना चाहिए, बढ़िया चंदन तब उतरेगा जब उसको धीरे धीरे घिसोगे प्रेम से, तो अच्छा चंदन घिसता है। वही ठग ये कुब्जा उसी तरह का चंदन घिसती थी, वो चंदन घिस के ही भगवान को रिजा ले गई, तो उसकी तरह धीरे धीरे चंदन। और अगर पत्नी के ऊपर गुस्सा करके या वैसी वर्षा चले जाते शरीर से, जब देखो उनकी नौकरानी लगी हूं जिसको देखो हुक्म करके बना देते हैं, आज इतने जनों भोजन बना कर रख लेना, मैं यही करने के लिए बैठी हुई हूं, तो सारा पति के ऊपर का गुस्सा उस चंदन के ऊपर उधर आता है। और वही गुस्सा वाला चंदन अगर भगवान के लगाओगे और भगवान को गुस्सा आ गया तब बोलो क्या होगा? अपने को धन्य मानो, चंदन भी घिसना है तो पवित्र भाव से घिसो। भगवान हमारे पुष्टि मार्ग में बाहर की माला चढ़ाना मना है, उल्लू थे क्या बल्लभाचार्य जी? अरे माला ही तो पहनानी भगवान को, हमसे बढ़िया माला बना देता है माली, लेकिन माली हमारी भावना कहां से लाएगा? हमारी भावना हमारे पास है, इसलिए एक एक पत्ती को ऐसे मोड़ करके ऐसे करके सीनियों, फिर ये रंग आ गया नीले वाला यों, फिर ऐसे करके, तो एक एक पत्ती में श्री कृष्ण के प्रति प्यार लगता चला जाता है, तब वो प्यार की माला है। और ऐसे प्यार की माला जब हमारे ठाकुर जी को पहनाओगे तो उनके ऊपर क्या रिजल्ट आएगा? ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, कैसे कोमल कोमल इनके अंग हैं, कहीं कुछ हमारे हाथ से तो बड़े धीरे धीरे अंगूठे से कभी नहीं रगड़ना चाहिए, ना अंगूठे ही मर गए देवम। तो हम इसलिए ये बात आप लोगों की सेवा में अर्पित कर रहे हैं कि अगर भगवान श्री वल्लभाचार्य जी संसार को सत्य कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे कि हम श्री कृष्ण को देख रहे हैं, हम चंदन नहीं देख रहे हैं, हमको कौन दिख रहा है? श्रीनाथ जी दिख रहे हैं, केसर नहीं दिख रही है, श्रीनाथ जी दिख रहे हैं, कस्तूरी तिलकम श्री कृष्ण, वस्त्र नहीं दिख रहे हैं, हमको मालपुआ नहीं दिख रहा है, हमको श्री कृष्ण दिख रहे हैं कि वो दोनों हाथों से ग्वालिया तो ऐसे ही होते तो वो दोनों हाथों से खाएगा, एक हाथ से क्यों खिलाए तो दोनों हाथों से खाएंगे। और इसीलिए उनके हाथ धोने जब पहली छप्पर भोग होगा तो एक तरफ एक बर्तन में जल रखा जाता है, ये खाना है तो यूं धोया हाथ फिर निकाला, अब कड़ुआ खाया फिर हाथ धोया, और फिर मीठा खाया फिर हाथ धोया, फिर खट्टा खाया, ये तो एक हाथ से होता खाते रहो तो दोनों हाथों से शुरू करते ग्वालिया का वास। तो हमारा समझने का मैं कहने का आशय ये है कि संसार सत्य है क्योंकि श्री कृष्ण सत्य है, संसार भी कृष्णमय है, तो कृष्ण के द्वारा कृष्ण के माध्यम से कृष्ण की उपासना हो रही है, ये श्री वल्लभाचार्य जी का ज्ञान है और इसको अद्वैत इसलिए कहा जाता है। अब उसमें विशेषण तुम लगा दो कि वो विशिष्ट अद्वैत है और ये ब्रह्म अद्वैत है और ये अचिंत, ये सब अद्वैत में कोई विशेषण लगते नहीं है, ये हमारे समझाने के लिए उन लोगों ने नाटक कर दिया है। अद्वैत माने अद्वैत, चाहे आम ब्रह्मास्मि कहो और चाहे कृष्णो हम कहो, उनमें कोई भेद नहीं है। तो दोनों में कोई भेद नहीं है। सृष्टि का वर्णन केवल अधिकारी भेद से है, जो संसार से ऊपर उठ जाए वो अद्वैत वेदांत करे, और जो न उठ पाए वो वल्लभाचार्य जी महाराज की सेवा करे, रामानुजाचार्य जी की सेवा करे। ये सब आचार्य हमारे कल्याण के लिए ही मार्ग बता रहे। तो इस पुरुषोत्तम मास के चरम दिवस पे हम लोग ये सोचें, ये संसार पुरुषोत्तम के द्वारा पुरुषोत्तम के लिए, भाई उसने क्या लिखा राष्ट्रपति ने, लिंकन ने, हाँ लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो ये ऑफ द कृष्णा, बाय द कृष्णा एंड फॉर द कृष्णा, बस। श्री रमण बिहारी लाल की जय।